भागवत सार की श्रृंखला में आज 24वें अध्याय पर चर्चा है, चौथे स्कंद के। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक जो शिव जी के द्वारा कहा गया है, इसको दोहराएंगे। कृपया आप सब दोहराइए। शनार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। माताजी, न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। क्षण अर्धेन आधा क्षण अपि भी तुलये तुलना कर सकता न कभी नहीं स्वर्गम स्वर्गलोक न तो अपुनर्भवम् ब्रह्म से तदात्म्या भगवत भगवान के संगी संगी संगस्य संग का लाभ उठाने वाला मर्त्यानाम बद्ध जीव का किम उत वहां क्या है आशिषः आशीर्वाद। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। त तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन हैं। तात्पर्य, यहाँ कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों में से भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का गीत है, कैवल्यम नरकायते त्रिदशा पुरकाश पुष्पायते। कैवल्य का अर्थ है भगवान के तेज में लीन होना। त्रिदशपुर देवताओं के निवास स्थान स्वर्गलोक का द्योतक है। इस प्रकार भक्त के लिए कैवल्य सुख नरक के समान है, क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोकर ब्रह्म तेज में मिलने को आत्मघात मानता है। भक्त सदैव अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है, जिससे वह भगवान की सेवा कर सके। दरअसल वह स्वर्ग जाने को माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। वह इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान के कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक पद पर स्थित भक्त के लिए कर्म या ज्ञान के फल भी तुच्छ हैं। भक्ति योग ही भक्त को सारा सुख प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यह आत्मा सुप्रसीदति। मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है, और यह भक्त की संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण दुष्ट हो सकता है, न भगवान की दिव्य स्थिति को ही समझ सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो Kali dhvanto didaditya Shri Krishna parivartita Paramananda pathaya Prema varshaksharayate Sarvada sarva sevyaya Shri Krishnaya namastute Madeka bandho matsangi Madguru man mahadhana Mannistarka madhagya Madananda namastute Asadhu sadhu tadain Ati nicho chatah kara Dhanamuncha kadachinma Premnarit kanthayosvura Hare Krishna Shivji ke dwara gaya gaya stuti ka gaan jise rudra geet bhi kehte hain to ye is adhyay mein kaha gaya hai कई श्लोक हैं जो उन्होंने कहे 30 से अधिक श्लोक उन्होंने भगवान के गुणगान में कहे हैं जिसे रुद्र गीत कहा जाता है और उनमें से एक श्लोक ये जो बोर्ड पर लिखा है ये भागवत में तीन स्थानों पर आया है ये श्लोक थोड़ा सा अंतर है एक शब्द का जैसे पहले स्कंद में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को यह श्लोक कहते हैं तो उसमें केवल दो शब्दों का अर्थ अंतर है तुल्याम लवे नापि यहां पर क्षणेर्धा क्षण को आधा अपि किया गया है तुल्यम तो वहां कहा गया है तुल्याम लवे नापि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगि संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः तो यही श्लोक कहा गया और फिर इसी श्लोक को आगे जब भगवान प्रचेताओं को दर्शन देते हैं तो प्रचेता भी यही श्लोक दोहराते हैं तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगि संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः और इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया है जब वो सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं भगवान का वर्णन करते हैं और फिर भक्ति का वर्णन करते हैं तो इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने भी दोहराया तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगि संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः तो हम सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये श्लोक है ऋषि मुनियों ने कहा शिव जी ने कहा प्रचेताओं ने दोहराया अर्थात भागवत में ही केवल तीन बार ये श्लोक आया शास्त्रों में जब कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है तो उसको दो बार कहते हैं और अगर तीन बार कहा है उसी चीज को शास्त्रों में तब फिर मान लेना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा तीन बार नास्तेव 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 तो ये बतलाने के लिए कि बिल्कुल यही महत्वपूर्ण चीज है तो वैसे ये श्लोक तीन बार भागवत में आया चैतन्य चरितमृत में इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को कहा सनातन गोस्वामी को तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जहां पर शिव जी कह रहे हैं कि क्षणार्धे नपि तुलये एक क्षण का आधा क्षण अर्धे न अपि तुलये क्षण का आधा समय भी तुलना नहीं कर सकता क्या क्षण का आधा समय भगवत संगी संगस्य अगर क्षणार्धे अपि भगवत संगी संगस्य तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम अर्थात जो आधे क्षण को भी हम तुलना नहीं कर सकते किसके आधे क्षण की भगवत संगी संगस्य तो भगवत संगी संगस्य क्षणार्धे अपि तुलयम तुलना नहीं कर सकते किससे, न स्वर्गम न पुनर्भवम, चाहे स्वर्ग इस भौतिक जगत में भोग भोग करने की या न पुनर्भवन इस जगत से मुक्ति पाने की, तो मुक्ति की भी तुलना नहीं कर सकते आधे क्षण के भक्तों के संग से। दूसरे शब्दों में अगर हमें दो चुनाव करने हो, एक तरफ भक्तों का संग हो और दूसरी तरफ स्वर्ग और मुक्ति हो, और भक्तों का संग केवल आधे क्षण का हो, तो आपको चुनाव करने के लिए दिया जाए कि या तो केवल आधे क्षण आप भक्तों का संग कर सकते हैं या फिर स्वर्ग जा सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं, तो शिव जी कहते हैं तुलना ही नहीं करनी चाहिए, बिना पूछे हमें आधे क्षण का संग ले लेना चाहिए। भगवत संगी संगस्य क्यों मर्त्यानाम किमुताशिषः, हमारे जैसे लोगों को जो इस मृत्य लोक में हैं, बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, किमुताशिषः, इससे अच्छा आशीष, इससे अच्छा वरदान कोई नहीं हो सकता। तो कौन बोल रहे हैं, स्वयं शिव जी, जिनके पास सारे जगत के लोग वरदान मांगने जाते रहते हैं, तो वो शिव जी कह रहे हैं कि मुताशिषः, ये सब वरदान ये सब आशीष मत मांगो। शिव जी का नाम है आशुतोष, बड़े जल्दी संतुष्ट होकर आशीष दे देते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं मर्त्यानाम कि मुताशिषः भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवत भगवान, संगी यानी उनके भक्त, संगस्य उनका संग करना, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और अगर क्षण को जानने का प्रयास करें कि क्षण किसे कहते हैं, तो भागवत में ही समझाया गया है कि क्षण से भी नीचे होते हैं लाभ, लाभ आप समझते हैं ना, लाभ मात्र साधु संग कहा जाता है, तो लाभ ये बहुत छोटा होता है, और तीन लाभ मिलकर निमेश बनते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते ना एक निमेश काल का भी समय, तो तीन लाभ मिलकर एक निमेश बनते हैं, तीन निमेश बनकर एक क्षण बनता है, तो तीन निमेशों का एक क्षण होता है, और अगर उसको सेकंड्स में अगर नापने का प्रयास करें तो डेढ़ सेकंड का समय एक क्षण होता है, यानी लाभ मतलब वो सेकंड से भी कम है। तो लाभ के बाद निमेश होता है, तो निमेश करीब आधा सेकंड का समय है, आधा सेकंड करीब करीब करीब, तो आधा सेकंड निमेश है, ऐसे तीन निमेश मिलकर एक क्षण बनाते हैं, और शिव जी कह रहे हैं उसका आधा क्षणार्धेपी, उतना समय मिल जाए भक्तों के साथ में रहने के लिए, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है तुलयाम अपी, तो वो कहते हैं लव मात्र, उससे भी लव से भी तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे यहां पर यह होता है क्षण, और पांच क्षण मिलकर एक काष्ठ बनाते हैं, और पंद्रह काष्ठ मिलकर एक लघु बनाते हैं, ये लघु करीब दो मिनट का होता है, ऐसे पूरा भागवत में उसका समय का विभाजन दिया गया है, आगे चलते चलते कैसे पक्ष महीना साल इत्यादि। तो ये केवल बताने के लिए कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, कि शिव जी कह रहे हैं कि क्षणेर्धापी, क्षण का आधा, और ऋषि मुनि कहते तुल्याम लवे नापी, लव मात्र भी, और वो तुलना नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कह रहे कि इनका लव मात्र का संग मुक्ति या स्वर्ग के बराबर है, बोले नहीं तुलना ही नहीं कर सकते, यानी इतना श्रेष्ठ है भक्तों का संग कि आप तुलना भी नहीं कर सकते, तुलना कर दोगे तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने बैठे तो सारे देवता आ गए, और देवताओं ने कहा कि अरे सुखदेव गोस्वामी आप भागवत की कथा क्यों इसको सुनाने जा रहे हैं, इसको मृत्यु का वरदान है ना, मृत्यु को शाप लगा है, तो ठीक है हम इसको अमृत दे देते हैं, हमारे पास अमृत है, ये अमृत पी लेगा मृत्यु नहीं होगी, सांप काटे कोई भी काटे कुछ नहीं होगा, अब हमें भागवत सुनाइए, तो भागवत उसको सुनाने के बदले हम ये दे देते हैं उसको अमृत, आप भागवत सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है उस क्षेत्र के बाहर कर दो इन देवताओं को, सुनाई नहीं देना चाहिए उनको। क्यों? इन्होंने अमृत से तुलना कर दी भगवान की कथा की, तो इनको तो वैल्यू नहीं पता, इनको पता नहीं है क्या मूल्य है भगवान की कथा का। अमृत से तुलना कर रहे हैं कि हम अमृत देते हैं, आप हमें भागवत कथा दीजिए, इसलिए बाहर करो इनको, कोई योग्यता नहीं है सुनने की, इनको बाहर कर दिया देवताओं को। तो इसी तरह ऋषि मुनि कहते हैं कि तुलना भी नहीं करना चाहिए उतने से समय के भी भगवान के भक्तों के संग की। तो ये शिव जी के रुद्र गीत में आएगा, जब हम लोग इस पर पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में वर्णन हुआ, जैसे पिछले अध्याय में पृथु महाराज भगवत धाम चले गए, और पृथु महाराज के भगवत धाम जाने के बाद उनके पुत्र विजिताश्व ये राजा सम्राट बने, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दिशाओं में उनके बाकी पुत्र राजा बने, और फिर विजिताश्व ने बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया, क्योंकि भगवान के बड़े महान भक्त थे वो, जैसे पृथु महाराज थे वैसे ही उनके पुत्र थे। तब उन्होंने राज्य किया, उनका वैसे एक नाम और पड़ा अंतर्धान। ये तब हुआ जब इंद्र ने घोड़ा चुराया था और इंद्र गायब हो गए, दिख नहीं रहे थे, लेकिन इनको दिख रहे थे, और इनको दिख रहे थे फिर भी इन्होंने इंद्र को मारा नहीं, हालांकि वो देख रहे थे। इंद्र अदृश्य रूप में घोड़ा चुरा कर ले गए थे एक समय, तो अदृश्य भी जा रहे थे तो इन्हें दिखे वो, लेकिन इन्होंने सोचा इंद्र है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो बड़े बड़े देवता होते हैं इंद्र जैसे भी, अगर वो कोई गलती भी कर देते हैं तो विजिताश्व ने मारा नहीं उनको। क्यों? ये जानते हुए कि उनकी स्थिति बड़ी ऊंची है, मारना नहीं चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। और इंद्र ने प्रसन्न होकर उनको नाम दिया अंतर्धान, अंतर्धान यानी गायब हो सकता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों के लिए भी कि अगर भक्तों से कोई गलती होती है तो उनको दंड नहीं देना चाहिए। ऑफकोर्स आप लोग प्रसन्न हो रहे होंगे ये सुनकर प्रभुपाद लिख रहे हैं, लेकिन वो दंड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा दंड नहीं देना चाहिए जिससे वो भक्ति से बाहर चले जाए। तो कहते हैं कि भक्त भी श्रेष्ठ है, तो जैसे इंद्र की श्रेष्ठता को देखकर विजिताश्व ने, जबकि वह ऐसा घृणित कार्य कर रहा था, प्रभुपाद लिखते हैं इंद्र ऐसे कार्य करते रहते हैं, कभी किसी की पत्नी के साथ उन्होंने जाकर गौतम ऋषि की पत्नी के साथ गलत कार्य किया, लेकिन फिर भी वो क्योंकि इतने ऊंचे पद पर हैं, तो केवल पद के लिए नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं उस पद पर रहकर, इसीलिए उनको क्षमा किया गया, उनको कोई पाप नहीं लगा। तो ऐसे भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो उनके हमें दोषों को नहीं देखना चाहिए। तो महाराज अंतर्धान उनके फिर आगे पुत्र हुए जिनका नाम था हवीरधना, और हवीरधना उन्होंने फिर राज्य किया, क्योंकि महाराज विजिताश ने राज्य किया, फिर बाद में वो थक गए कि क्या ये मैं भक्ति करूं कि लोगों से टैक्स लेना, दंड देना, ये सब उन्हें पसंद नहीं आया। भगवान के भक्त ये सब आनंद नहीं लेते हैं इसमें, जो भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त के लिए मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है है ना, कौन टेंशन ले ये सब, ये करो वो करो वो करो, जो भगवान के भक्त हैं वो अपना भजन में लगे रहते हैं। लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए आवश्यक होता है, जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने कितने व्यवस्थापन की, कितना मैनेजमेंट किया, हर एक चीज को देखा करते थे। एक स्थान पर वर्णन है कि प्रभुपाद हिसाब रखते थे तो पैसे का भी हिसाब रखा करते थे, कितना रुपया कितना पैसा जरा जरा से, तो इतना कर रहे हैं, कोई पूछे रहे शुद्ध भक्त जरा जरा से एक दो रुपए के लिए चार पैसे के लिए क्यों चिल्ला रहे, गुस्सा क्यों कर रहे, प्रभुपाद करते थे। एक उनका वीडियो हम देख रहे थे, उसमें था कि उनके कोई भक्त आकर उनको कहते कि प्रभुपाद फला फला व्यक्ति वो बीबीटी के लिए बीबीटी में से इतना पैसा मांग रहा है मंदिर बनाने के लिए, नहीं नहीं उसको नहीं दे हम नहीं दे सकते पैसा, उनको बोलो अपने आप इकट्ठा करें। तो ऐसे अलग अलग तो प्रभुपाद व्यवस्थापन भी बहुत अच्छा करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहे थे, जो चीज़ें करनी है भगवान के लिए उसको अच्छे से करना, तो बहुत अच्छा व्यवस्था। एक समय वृंदावन में थे शायद प्रभुपाद, तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति सब्जियां काट कर जो फेंका जाता है, जो छिलके वगैरह, वो उठा कर ले जा रहा है, बहुत सारे थे वृंदावन में, काफ़ी तो बहुत सारा वो भर के ले जा रहा है छिलके। तो प्रभुपाद खिड़की पे खड़े थे, वहीं से जोर से चिल्ला, रोको रोको, उसको चोरी कर रहा है। अब क्या चोरी कर रहा है, छिलके लेके? तो सब लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गया प्रभुपाद को, तो छिलके लेके? तो हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना, अच्छा है लेके जा रहा है। तो प्रभुपाद ने, नहीं वो हमारी गायों के लिए है, वो गायें खाएंगी। मतलब कितना ध्यान रखते थे कि छिलका अगर है उसको फेंकना नहीं, गायें खा लेंगी, नहीं तो गायों के लिए अलग से खरीदना पड़ेगा चारा, ये गायें खाएंगी, गायें तंदुरुस्त रहेंगी। तो उनको चिल्ला रहे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज पे प्रभुपाद ध्यान दिया करते थे। एक समय मायापुर में जा रहे थे, रूम के बाहर से सब लोग चल रहे हैं, प्रभुपाद है, अचानक रुक गए, पास गए और गुस्सा किया कि किसका रूम है। तो सबने कोई भक्त का नाम लिया, प्रभुपाद ने बहुत गुस्सा किया, पंखा खुला छोड़ कर गया अंदर, बुलाओ उसको, पंखा बंद करवाओ। तो ये जरा जरा सी चीजें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, पंखा एसी सब चालू है, हम लोग तो घूमते आराम से कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बिलाएगा मंदिर पर, है ना। प्रभुपाद उतनी सी चीज को भी देखते थे, पंखा चालू बंद कराओ उसको, वो छिलके लेके जा रहे हैं उनको रोको, गायों को खिलाएंगे हमारी। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजों पर प्रभुपाद बड़ा ध्यान दिया करते थे। व्यवस्थापन में वृंदावन में उन्होंने नियम बनाया था, वो हर एक घंटे में आधे घंटे में बेल बजनी चाहिए, और कभी कभी नहीं बजती थी, जो बजाने वाला सो जाता था, प्रभुपाद रात को सर्वेंट को उठा, इधर घंटी क्यों नहीं बजी, जाकर देखो रात को। वो बेचारा सो के उठे, जाके देख रहे घंटी क्यों नहीं बजी है, घंटा कहाँ गया, वो वॉचमैन को ढूंढो, उसको बोलो बजाए घंटी। तो ये सारी चीजें व्यवस्थापन है। कोई कह सकता है शुद्ध भक्त इनको क्या चिंता, ये सब करते रहते हैं कि घंटी बजे कि नहीं ठीक समय पर, वो गाय के लिए है कि नहीं, वो पैसे का हिसाब किताब मिला कि नहीं, उसको पैसा देना है नहीं देना है। इन प्रभुपाद सारा किया करते थे, व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरीके से होता था। और वही गुण भक्तों में भी आया, उनके शिष्यों ने भी मंदिर के व्यवस्थापन को बहुत अच्छी तरह से आज तक वो लोग चला रहे हैं, इतना इतनी बड़ी संस्था चल रही है। तो खैर ऐसे विजिताश्व ने छोड़ दिया कि बस हो गया, फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया, वो चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए वन में। और फिर उनके पुत्र जो थे हवीरधना, उनके भी उन्होंने आगे चलकर, उनके पांच पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े थे बरहिष्यत, जिनकी कथा अब हम आगे कई अध्यायों में सुनेंगे। और उनके पुत्र हुए प्रचेता। तो आपको याद होगा कि ये प्रचेताओं की कथा क्यों प्रारंभ हुई थी, ध्रुव महाराज की कथा जब समाप्त हुई तो मैत्री मुनि ने क्या कहा कि ये कथा नारद मुनि ने बड़े जोर से बड़े उत्साह से प्रचेताओं के यज्ञ में गाई थी, बस इतना कह दिया। तो विदुर ने प्रश्न किया प्रचेता कौन है, क्या उनका इतिहास, तो अब उनका इतिहास ध्रुव महाराज से चला आ रहा है। अब राजा बरहिष्यत तक आया, या प्राचीन बरही, ये भी नाम से वो जाने जाते थे। तो अब उनके तक आया और उनके पुत्र हुए प्रचेता। ये मैत्री मुनि बड़े संक्षेप में बता रहे हैं, तो कहने लगे कि उनके पुत्र प्रचेता हुए, और प्रचेताओं ने तपस्या की, जल में जाकर समुद्र में जाकर उन्होंने तपस्या की, और फिर उनको शिवजी ने, उसके पहले उनको शिवजी ने भगवान का ज्ञान दिया और उन्होंने जाके तपस्या की, बस समाप्त हो गया। क्योंकि राजा प्राचीन बरही ने कहा, बरहिष्यत ने कहा कि तुम्हें अभी विवाह करना है, 10 पुत्र थे उनके, ये प्रचेता जो हैं 10 हैं, तो अब तुम्हें विवाह करना है, इसलिए अब तुम, तो विवाह के पहले वो तपस्या करने चले गए, ये नियम था। तो उस समय का नियम था कि कुछ भी करना है तो उससे पहले तपस्या करनी, तो वो तपस्या करने चले गए और शिव जी मिले और फिर उन्होंने ज्ञान दिया और उससे भगवान प्रसन्न हुए, बस कथा समाप्त कर दी। तो विदुर ने कहा एक मिनट, शिव जी कैसे मिल गए प्रचेताओं को, अचानक राजाओं की बात आ रही है, अचानक शिव जी मिले, ये तो मिलने बड़ा दुर्लभ है, शिव जी कैसे दर्शन दे सकते हैं, और शिव जी कैसे मिले, क्या उन्होंने कहा, प्रचेताओं ने क्या किया, ठीक से बताइए विस्तार से। तो मैत्री मुनि ने कहा यही मैं सुनना चाहता था, मतलब देख रहे थे ना मैत्री मुनि, उत्साह है कि इस्कॉन के भक्त हैं विदुर, तो वो इसीलिए बार बार वो ऐसे पूछ रहे, कि इस्कॉन के भक्त तो नहीं, आप जानते ना इस्कॉन के भक्त बोलने में क्या अर्थ है? फिक्स टाइम है सोने का, जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई आंखें बंद, परंपरा है ना। तो इसलिए मैत्री मुनि देखते रहते थे कि कहीं मैं बोल रहा हूं और विदुर, ये तो सब जगह होते, कभी कभी कृष्ण कथा करते हैं तो भी लोग सो जाते हैं, बाकी की बात क्या है। कृष्ण सुभद्रा को बता रहे थे, सुभद्रा ने प्रश्न किया कि युद्ध में अलग अलग व्यू होते हैं आप बताइए, तो उन्होंने कहा आज तुम क्यों पूछ रही हो, नहीं मैं सुनना चाहती हूँ, तो ठीक है। तो उन्होंने बताना शुरू किया और फिर सुभद्रा, तो देखिए परंपरा है कृष्ण भी कथा कर रहे हैं तो भी व्यक्ति सो जाता है, फिर हम लोगों की क्या वैल्यू है ना। कृष्ण से कोई सुनते हुए सो जाए, ऑफकोर्स भगवत गीता में ऐसा वर्णन नहीं है कि अर्जुन सो गए थे भगवत गीता सुनते सुनते, तो ये परंपरा। तो बार बार तो विदुर ने प्रश्न किया कि एक मिनट शिव जी का बताइए कैसे मिले। तो फिर वो विस्तार से बताने लगे कि राजा प्राचीन बहिष्ठ उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी का नाम था शतद्रुति। तो विवाह का वर्णन किया कि जब उनका विवाह होने लगा बहुत सुंदर थी शतद्रुति, इतनी सुंदर थी कि विवाह में जब वो फेरे लेते हैं ना अग्नि के चारों ओर, वो जब ले रही थी तो अग्नि आकर्षित हो गए उनसे, अरे इतनी सुंदर है। तो ऐसा लिखा है, और अग्नि वैसे पहले भी आकर्षित हुए हैं। जब ऐसे ही सप्त ऋषियों का विवाह हो रहा था शुकी से, शुकी नाम की स्त्री थी बहुत सुंदर थी, तो अग्नि उससे आसक्त हो गए और उनकी पत्नी स्वाहा ने देखा, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसीलिए जब हम लोग अग्नि में कुछ डालते हैं तो क्या कहते हैं, यस, यज्ञ में एक चीज याद रहती है ना, हमें भी, हम लोग भी उसी तरह यज्ञ में हमें एक ही याद रहता है स्वाहा। यज्ञ होता है, पंडित आता है बैठता है, हम सब बैठ जाते, सब लोग यज्ञ के लिए बैठते हैं, उनको कुछ दिया जाता है कि ये उंगली नहीं लगाना, ऐसे पकड़कर ऐसे फेंकना, वो तैयार रहते हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है, एक ही चीज सुनाई देती है स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा ये अग्नि की पत्नी का नाम है। तो उस समय जब शुकी के प्रति आकृष्ट हो गए तो अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा, उन्होंने शुकी का रूप लिया और फिर अग्नि ने उनसे संग किया, तो किया अपनी पत्नी से ही लेकिन रूप शुकी का लिया, तो आकृष्ट हो गए थे, इतनी सुंदर थी। इसी तरह ये जो बरीशत की पत्नी शतद्रुति बहुत सुंदर थी, देवता गंधर्व ये सब भी इनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे और इनसे फिर 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रचेता राजा बरहिषत ने अपने पुत्रों से कहा कि आप जाइए और तपस्या कीजिए। तो वे लोग सब तपस्या करने आए। तो विदुर ने जब प्रश्न किया था कि, तो मैत्री मुनि पहले कहते हैं कि तुमने जो कहा वो सही है, शिवजी को देखना बहुत कठिन है, कोई साधारण व्यक्ति शिवजी को देख नहीं सकता। तो क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि शिवजी कौन है? अगर हम लोग देखें, प्रयास करें जानने का क्यों शिवजी को देखना कठिन है, एक तो वो देवता हैं, महान देवता, देवताओं के देव, देवादिदेव, महादेव, तो इसीलिए उनको देखना कठिन है। दूसरा, प्रभुपाद तात्पर्य में शिवजी का वर्णन करते हैं कि शिवजी कौन है, तो एक उनकी पहचान है कि वो संप्रदाय के आचार्य हैं, एक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जिसको वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, वल्लभ आचार्य जी के नाम पर वो शिवजी से प्रारंभ होता है, तो उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो शिवजी प्रमुख आचार्य हैं उस संप्रदाय के। दूसरी पहचान शिवजी की, 12 महाजनों में से एक। तो रुद्र संप्रदाय के प्रमुख होने के कारण वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। दूसरा, 12 महाजनों में से एक है, स्वयंभू नारद शंभु, तो 12 महाजनों में से एक हैं। और यमराज कहते हैं भागवत के 6 स्कंद में कि ये 12 लोग भगवान को जानते हैं, क्योंकि महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु इत्यादि, तो ये कहते हैं कि ये लोग जानते हैं, तो इसीलिए दुर्लभ हैं। प्रभुपाद लिखते कि भगवान के भक्त बड़े दुर्लभ हैं और वो भी शिव जी जैसे। तीसरी पहचान शिव जी की है कि शिव जी, क्योंकि आज रुद्र गीत है तो थोड़ा शिव जी का वर्णन जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में किया, तीसरी पहचान शिव जी की है शंकराचार्य के रूप में। शिव के रूप में तो उनकी पहचान है ही, अगर उसका वर्णन करने जाएं तो शिव जी का वर्णन बड़ा कठिन है, कैसे अपने आप को 11 रुद्रों में वो प्रकट करते हैं, तांडव करते हैं इत्यादि। लेकिन हमें जो ज्ञात है उसकी भी चर्चा करें तो एक संप्रदाय के प्रमुख हैं, दूसरे 12 महाजनों में से एक हैं, तीसरा शंकराचार्य जी हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने आके क्या किया, हाँ वो तो किया ही, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अपने अंतिम समय में उन्होंने जो भजन लिखे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, यानी अपनी सारे वो ग्रामर वामर सिखाने के बाद अंत में उन्होंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है, सब सिखा दिया। जैसे श्री कृष्ण सारे योग सिखा दिए, धर्म सिखा दिए, अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजम, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसको छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो ऐसे ही शंकराचार्य जी ने सब सिखा दिया, शास्त्रों को उल्टा सीधा पढ़ना। आप जानते हैं शंकराचार्य जी के अनुयायी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो श्लोकों को कभी इधर से पढ़ते हैं फिर इधर से पढ़ते हैं, ऐसे सीखते हैं श्लोक को उल्टा पढ़ना ये करना। तो सारे वो सब सिखा दिया उन्होंने, ग्रामर सिखा दी, संधि विच्छेद सब सिखा दिया, कैसे तोड़ना है, क्या अर्थ निकालना है, गलत अर्थ निकालना सब सिखा दिया, और अंत में क्या कहा, कुछ मत करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, यानी अपने अनुयायियों को बोल रहे हैं कि तुम लोग मूर्ख हो क्योंकि ये सब ग्रामर में पढ़े हुए हो, ये सब आपके अंतकाल में काम नहीं आने वाली है। अंतकाल में अगर भगवान, अभी मृत्यु होने वाली है तो कौन से श्लोकों को तोड़ के प्रस्तुत करोगे, भगवान का ही नाम लोगे ना, तो इसीलिए वो कहते ये सब छोड़ो भज गोविंदम। तो शंकराचार्य के रूप में भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, आचार्य के रूप में, संप्रदाय के आचार्य के रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार, 12 महाजनों के रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार, शंकराचार्य जी के रूप में कृष्ण भक्ति का वो प्रचार करते हैं कि किस तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए, भज गोविंदम। हाँ, उनके अनुयायी बाद में आकर कहने लगे कि दरअसल ये जो उनका कहने का अर्थ है वो अलग है। तो क्या अर्थ है, भज गोविंदम मूढ़मते का अर्थ है कि उनका एक नौकर था जिसका नाम था गोविंद, ऐसा वो लोग कहते हैं, उनका एक सेवक था गोविंद, तो वो उसको कह रहे थे कि तू मूर्ख है, तेरे को ज्ञान नहीं आ सकता, तू शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तेरे अंदर बुद्धि इतनी नहीं है जितनी मेरे अनुयायियों में है, शास्त्र को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं कर सकता, इसीलिए केवल भज गोविंद भजन कर, तो तेरे लिए भजन है लेकिन हमारे लिए ज्ञान है, तो ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी इतने मूर्ख थे, वो जानते हैं कि जो आचार्य शिक्षा देते हैं और वो भी विशेषता अंत समय में वो कितनी प्रचार होती है, उस समय वो अपने नौकर का नाम लेंगे, सेवक का नाम लेंगे कि उसको मैं बता रहा हूं। इतना सुंदर उन्होंने भजन लिखा है, अगर वो भजन पढ़े आप लोग, बहुत सुंदर भजन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी के रूप में भी भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, और जब भक्तों से मिलते हैं, जैसे प्रचेताओं से मिल रहे हैं, तब क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार। प्रचेताओं से मिलकर आगे वर्णन आएगा कि उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर कृपा करना चाहता हूं, तो क्यों कृपा करना चाहते हैं, अभी प्रचेताओं ने तो बुलाया नहीं था शिव जी को, प्रचेता गण जब उनके पिता ने कहा कि जाओ तपस्या करने तो वो पश्चिम दिशा की ओर चले गए। अब चलते चलते उन्होंने देखा एक स्थान पर पहुंचे, बहुत सुंदर स्थान, एक बहुत बड़ा सरोवर था पानी का, इतना बड़ा कि वो समुद्र के समान था, हालांकि समुद्र नहीं था, लहरें नहीं थी उसमें, बड़ा शांत था लेकिन इतना विशाल था कि समुद्र के समान है। आपने कभी ऐसा कोई देखा जो बहुत बड़ा समुद्र जैसा हो लेकिन कोई लहरें नहीं हो, नहीं देखा ना, हमने देखा, अभी हम गए थे अफ्रीका में, वहाँ एक लेक है, इतनी बड़ी लेक है कि देख ही नहीं सकते कि उसका कहाँ पर अंत है, वो तीन देशों को टच करती है, उसके उसके कोने पर तीन देश हैं, इतनी बड़ी लेक है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र, जब हम गए तो हमें लगा कि जैसे हम लोग कारोबार में समुद्र के बीच पे जाते हैं वैसा ही है, और क्या है। लेकिन एक भी लहर नहीं उसमें, शांत पूरा, क्योंकि वो सरोवर है, समुद्र नहीं, और पानी भी मीठा था, खारा नहीं। तो वे लोग भी ऐसे ही स्थान पर गए, पता नहीं अफ्रीका गए होंगे, कहाँ गए होंगे तपस्या के लिए, लेकिन गए ऐसे स्थान पर। और बहुत सुंदर वो स्थान था, बहुत रमणीय स्थान था, बड़े अच्छे वृक्ष फूल कमल खिले हुए थे, और इतना ही नहीं उनको वाद्यों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, अर्थात देवता वहाँ पर अदृश्य रूप से कीर्तन कर रहे थे। तो ये स्थान उन्हें अच्छा लगा प्रचेताओं को, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे तपस्या करेंगे। और उतने में उन्होंने जल से देखा शिवजी निकल कर आ रहे हैं, और शिवजी अकेले नहीं थे, शिवजी के साथ सारे गंधर्व किन्नर अप्सराएं उनकी शक्तियां सब आ रही। तो शिवजी की एक और पहचान है कि वो माया देवी के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, दुर्गा के पति हैं। दुर्गा इस जगत को चलाती हैं और उनके पति कौन हैं? शिवजी हैं। तो इसलिए ये उनकी और एक पहचान है। शिवजी के लिए कभी कभी कार्य कठिन हो जाता है, एक भक्त हैं, वैष्णव हैं, और फिर उनको ये कार्य करना पड़ता है कि अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा असुरों का वध कराते हैं, दंड देते हैं लोगों को, तो शिवजी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। कभी कभी दुर्गा इतनी क्रोध में आ जाती हैं कि वो जितने असुर हैं उनको मार देती, जितने वैसे असुर हैं वो सब पूजा करते हैं दुर्गा और काली की, दुर्गा काली एक ही का रूप है, तो पूजा करते हैं दुर्गा और काली की, है ना। आपने सुना है जहां भी आप देखिए असुर किसकी पूजा कर रहे हैं, चोर किसकी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की। चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि जिस समय नित्यानंद प्रभु को लूटने के लिए चोर आ रहे थे उनके पास, चोरों का पूरा दल था, तो वो किसकी पूजा कर रहे थे? काली की, दुर्गा की। जिस समय जड़ भरत को मारने के लिए लेकर चले गए थे, उनका गला काटना था, किसकी पूजा कर रहे थे? काली के। तो जहां भी आप देखो ये पूजा करने वाले सब ऐसे ही रहते हैं, तो वे लोग करते हैं, लेकिन दुर्गा उन्हीं असुरों को मारती है। दुर्गा फिर मार देती है, जब गुस्से में आती है कि ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, खत्म, मार डालती है। और कभी कभी आपने एक ऐसा चित्र देखा होगा, ऐसा चित्र है कि दुर्गा बड़े गुस्से में है और शिव जी नीचे दंडवत कर रहे हैं अपनी ही पत्नी को, कहीं देखा है दृश्य चित्र? बहुत बहुत फेमस है। हाँ हाँ, इस्कॉन में आने के पहले देखा था, इस्कॉन में आने के बाद तो शिवजी के चित्र ही नहीं दिखाई देते। तो क्या, तो ये क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं कि कभी कभी दुर्गा इतनी क्रोध में हो जाती है असुरों को मारने के लिए कि वो किसी की नहीं सुनती, और उस समय शिवजी को उसको शांत करने के लिए प्रणाम करना पड़ता है दुर्गा को, अपनी पत्नी को, कि शांत हो जा भाई, बहुत है, बाद में मार दिया। ये भी है, तो शिवजी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है ये बताया जा रहा है। तो अपनी पत्नी के सामने दंडवत प्रणाम करते, शांत हो जाओ, मारो नहीं ज्यादा लोगों को। तो ऐसे ये दुर्गा हैं। तो शिवजी की एक पहचान ये भी है कि वो भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, और जैसे भागवत में दिया गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं शंभु, भगवान के भक्तों में। तो ऐसे ये शिवजी की पहचान है, और ऐसे शिवजी आ गए प्रचेताओं के पास। अब वर्णन कर रहे हैं शिवजी प्रचेताओं को, तो देखा उन्होंने तो प्रचेता भी भेताओं ने दंडवत प्रणाम किया, अचानक शिवजी सामने आए, आप सोचिए उनको कितना आनंद हुआ होगा। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक शिव जी आ जाएं कि हाँ मुझे पता है तुम लोग इस्कॉन के भक्त हो, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, प्रचार अच्छा कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दंडवत करेंगे या नहीं। मैंने पूर्ण दंडवत प्रणाम किया, शिव जी सामने आ गए। तो शिव जी ने कहा मैं जानता हूँ आप लोगों को, आप सब राजा बरहिषत प्राचीन बहिर के पुत्र हो, और मैं ये भी जानता हूँ आप किस काम के लिए जा रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको, आपके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ, आपको कोई गीत, कोई मंत्र सिखाना चाहता हूँ, स्वयं शिव जी बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। ऐसा नहीं कि प्रचेताओं ने शिव जी को देख के दंडवत की कि कुछ कीजिए, हमारे ऊपर कुछ कृपा कीजिए, कुछ बताइए। देखिए लोग शिव जी से मांगते हैं जाकर, कुछ दीजिए कुछ दीजिए। प्रचेताओं ने कुछ नहीं मांगा, केवल प्रणाम किया। स्वयं शिव जी कह रहे हैं मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और फिर उन्होंने मानो पूछ लिया हो क्यों देना चाहते हैं, हमें क्या, ना हमने आपसे मांगा, ना हम आपको जानते हैं, ना हम पार्वती जी की तरफ से आए हैं, ना मतलब आपके ससुराल के भी लोग नहीं हैं। ससुराल वालों को जरा ज्यादा कुछ किया जाता है ना पत्नी को शांत रखने के लिए, तो हम तो कुछ भी। ऑफकोर्स प्रचेताओं ने ये नहीं कहा था, मान लीजिए प्रचेताओं ने ऐसा कहा हो कि हमारे ऊपर क्यों, क्या विशेष। तो वो कहते हैं शिव जी भगवंतम वासुदेवम, एक ही कारण है, क्योंकि आप सब भगवान वासुदेव के भक्त हैं, इसलिए आप पर कृपा करने के लिए आया। तो देखिए यहां शिव जी का और एक पहचान कि शिव जी ऐसे लोगों पर, ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं जो भगवंतम वासुदेवम भज वासुदेवम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। दूसरे लोगों को उनके पास जाना पड़ता है मांगने के लिए, उनके ही अनुयायियों को उनके पास जाना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कितने सोमवार को दूध चढ़ाना और पत्ते चढ़ाना और पता नहीं क्या क्या, तब जाकर कोई ऐसा एक भौतिक आशीर्वाद उनको दे देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं शिव जी खुद उनके पास आते हैं। यहाँ पे प्रमाण है, प्रचेताओं ने बुलाया नहीं, प्रचेता तो जानते भी नहीं थे कि हम शिव जी से मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग भगवंतम वासुदेवम शिव जी कहते हैं, क्योंकि आप भगवान वासुदेव के भक्त हो और मुझे बहुत प्रिय हो, जैसे भक्तों को मैं बहुत प्रिय हूं ऐसे ही मुझे भी भक्त बहुत प्रिय हैं, शिव जी कहते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देने के लिए आया हूं, और मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो बहुत शुभ होगा, इसका आप उच्चारण करना तो निश्चित जीवन में आप सफलता को प्राप्त करोगे। जिस काम के लिए आए हो उसमें सफल होगे। भगवान का भजन करने आए हो तो शिव जी बताएंगे। तो ऐसे करीब पहले 15 श्लोकों में तो वर्णन इतना हो गया कि किन के वंशज कैसे आए, मतलब पृथु महाराज के बाद कौन कौन हुए इत्यादि। फिर 16वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक शिव जी कैसे मिले प्रचेताओं से, इसका वर्णन किया गया, जैसे शिव जी मिले आए, शिव जी का वर्णन इत्यादि। और 33वें श्लोक से आगे करीब 68वें श्लोक तक रुद्र गीत है। तो ये शिव जी जो इस अध्याय का प्रमुख विषय है वो 33वें श्लोक से लेकर 68वें श्लोक तक गाया गया है, तो इसको रुद्र गीत कहा गया है। और आगे फलश्रुति दी गई है उसकी, उन श्लोकों के आगे 69 69 से लेकर 79 अंत तक फलश्रुति दी गई है कि शिव जी ने फिर क्या कहा, और शिव जी ने खुद ही फलश्रुति दी है कि इसको जप करने से, ये जो मंत्र है जो मैंने तुम्हें दिया है रुद्र गीत, इसका जाप करने से निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है, और उसका ही एक ये श्लोक है। तो शिव जी ने ऐसे रुद्र गीत कहा। हमारी इच्छा थी कि आज इस अध्याय को समाप्त करेंगे, लेकिन रुद्र गीत ही प्रारंभ नहीं हुआ तो कैसे समाप्त हो सकता है, तो इसीलिए कल इस रुद्र गीत पर चर्चा होगी कि किस प्रकार रुद्र गीत क्या है। शिव जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें ये सिखलाया था ये रुद्र गीत, जब हमें, हम सबको जितने ब्रह्मा जी के पुत्र हुए उनको जब प्रजनन क्रिया करनी थी, सृष्टि की रचना करनी थी, उस समय ब्रह्मा जी ने हमें ये रुद्र गीत बता, जो मैं बता रहा हूँ इसको बताया था, तो वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। तो बहुत सुंदर गीत हैं वो। तो अभी एक ऐसे करेंगे, आप लोगों में से पास किसके पास भागवतम है, कितने लोगों के पास, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों के पास भागवतम है अभी इस समय, घर पे नहीं। ओके, हम सोच रहे थे इस रुद्र गीत को पढ़ें जो 30-32 श्लोक हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप सब नहीं पढ़ पाएंगे ना।